मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस 30 मार्च 2016 के afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं सविता मेश्राम, आप कबीर धाम छत्तीसगढ़ से हैं। परेश पांडे, आप भी कबीर धाम छत्तीसगढ़ से हैं। वेदपाल, आप करनाल हरियाणा से हैं। विकास कुमार साहू दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से हैं और अरुण सिंह भोपाल से हैं। तो सविता, परेश, वेदपाल, विकास और अरुण, आप सभी 5ों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों अभी मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूं और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आप सबके सामने फेयरवेल एड्रेस देते हुए आप सबको विदा कर रहा होऊंगा। जीवन का मित्रों क्रम यही है और आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं इसी को आधार बना करके कल के जो डेली ऑडियो में हम लोग ऊब की बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करना चाहूंगा। दोस्तों मेरे पास कल एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा भरा मेल आया है जिसे मैं सच यदि कहना चाहूं तो वह मेल न होकर कोई पत्र न होकर कोई फीडबैक न होकर के बल्कि मुझे साहित्य का एक छोटा सा खूबसूरत टुकड़ा अधिक लगा। मैं इस मेल को पढ़ने के बाद अभिभूत हो गया और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस मेल में लिखने वाले ने अपना दिल ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं अपनी आत्मा को भी उड़ेल दिया है जो भाषाओं के माध्यम से और भावनाओं के माध्यम से ईमानदारी के साथ बहुत अच्छी तरह व्यक्त हो रही है। दोस्तों इससे पहले कि मैं इस मेल को लिखने वाले का नाम बताऊं मैं आप सबसे जो मेरे प्रिय श्रोता हैं और विशेषकर उन सबसे भी जिन्होंने 15 दिन की क्लासेस अटेंड की हैं, 15 दिन की क्लासेस अटेंड करने वालों की संख्या अब लगभग 2000 के करीब पहुंच चुकी है। मित्रों मैं आप सबसे खुद एक सवाल करना चाह रहा हूं और वो ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको अपनी तरफ से इसका उत्तर देना है, आपको खुद सोचना है कि आप सब यहां 15 दिन के लिए आते हैं, 15 दिन की क्लासेस अटेंड करते हैं और 15 दिन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 6 घंटे से 1 सेकंड के लिए भी कम क्लास अटेंड कर रहे हो, हमेशा ज्यादा क्लासेस होती हैं। लास्ट जो क्लास होती है हमारी 4:30 बजे से वो 6:30, 7, 7:15 तक वो क्लासेस चली हैं और यदि हम उस वक्त को जोड़ लें तो आप लगातार 2.5 से 3 घंटे तक उस क्लास रूम में बैठे रहते हैं, पूरे अटेंशन के साथ बैठे रहते हैं। लास्ट क्लास होती है इससे पहले आप 4.5 घंटे की क्लासेस अटेंड कर चुके होते हैं, इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान दिखाई नहीं देती, उत्सुकता बनी रहती है और आप अपनी ऊर्जा के शिखर पर होते हैं क्योंकि तालियों के जरिए, प्रश्नों के जरिए आप जिस अपनी ऊर्जा का प्रमाण देते हैं वह अपने आप में इस बात को प्रूफ करने के लिए सफिशियंट है कि आप में अभी भी उत्साह उतना ही बना हुआ है और अनुशासन इतना अधिक कि यदि उस क्लास में एक सुई भी गिरा दी जाए तो उसकी आवाज को सुना जा सकता है। मित्रों ऐसा आप ही करते हैं और ऐसा एक दिन नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, 3 दिन नहीं करते बल्कि लगातार 15 दिनों तक आप करते हैं। यदि मैं सामान्य भाषा में इसे कहना चाहूं जैसा कि लोग अक्सर समझते हैं वो मैं कह सकता हूं कि ये एक तरीके से आप सबके लिए 15 दिनों का एक कंसंट्रेशन कैंप होता है, एक यातना शिविर होता है। आपको एक अनुशासन में रहना पड़ता है, 15 दिनों तक उसी तरह का टाइम टेबल होता है और सबसे बड़ी बात कि लेक्चर सुनने जैसा उबाऊ काम करना पड़ता है, आप करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ऐसा क्या होता है कि 15वें दिन आखिरी दिन जब आपको इस यातना शिविर से मुक्त किया जाता है, आपको छुट्टी दी जाती है अपने अपने घरों को लौटने के लिए, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, अपनी नौकरी पर जाने के लिए, अपने क्लासेस अगर आप पढ़ रहे हो तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए, इसके बावजूद आप सबकी आंखें नम होती हैं और गला तर होता है और ज्यादातर आंखें तो जैसा लगता है जैसे कि उसमें बरसात की झड़ी लग गई हो। ऐसा क्या होता है? सच पूछे तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो हमें इस यातना शिविर से मुक्ति मिली, दुख से, परेशानी से, तकलीफ से, इस अनुशासन की जकड़न से आप आजाद हुए। लेकिन मित्रों, जहां तक मेरा अनुभव रहा है और जहां तक ईमेल के जरिए मुझे एहसास होता है, वो कुल मिलाकर के ये कि आप सब बहुत जबरदस्त रूप से उन 15 दिनों की क्लासेस को मिस करते हैं। आपको लगता है कि ये क्लासेस और होनी चाहिए थी। मित्रों, अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर ये सच है, और मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों के मामले में सच ही मुझे लगता है, सभी के मामलों में तो मैं नहीं कह सकता, गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ज्यादातर के मामलों में यदि यह सच है तो इस सच को सिद्ध करने वाला कौन है? वो आप हैं। आप इन 15 दिनों में क्यों नहीं उबते? 15 दिनों को खत्म करने का दुख आपको क्यों सालता है? ज्यादातर लोगों को सालता है। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, आपको सिर्फ इसी का विश्लेषण करना है। और कल मुझे जो एक बहुत प्यारा जो मेल मिला है, जिसे मैंने एक पीस ऑफ लिटरेचर कहा है, अब मैं उस मेल को भेजने वाले का नाम बताना चाहूंगा। वो फोर्थ बैच के हमारे स्टूडेंट थे और उनका नाम है राज दवे, जो भावनगर गुजरात से हैं। कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं उनकी, जो मैंने कहा कि ये पीस ऑफ लिटरेचर है जिसमें भावना और विचारों और आत्मा की गहराई और ईमानदारी और निश्चलता और निर्मलता झलकती है। वो कैसे झलकती है, कैसे उसका एहसास हो जाता है? सरल शब्द बहुत सरल हैं, लेकिन शायद सरल ही सबसे ज्यादा कठिन होता है। उन्होंने लिखा है, जब वो क्लास से उतरकर नीचे आए, जो स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको मालूम है कि फर्स्ट फ्लोर पर क्लास चलती है और उसके नीचे ही फ्लोर पर जो बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें उन्हें ब्रेकफास्ट, लंच और टी प्रोवाइड किया जाता है। जब मैं नीचे उतरकर आया तो वहां हर रोज टेबल लगे हुए होते थे दूसरे दिन के नाश्ते के लिए, लेकिन आज वहां वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे मेरी बहन की विदाई याद आ गई। शादी का पूरा दिन तो कामकाज की व्यस्तता में मैं संभल गया था, लेकिन जब 3 बजे मैंने देखा तो कैटरिंग वालों ने अपना सामान समेट लिया था और पूरा का पूरा हॉल जैसे खाली ही लग रहा था, जैसे कि सब रौनक चली गई हो, मतलब कि अब तो बिछुड़ना ही बिछुड़ना है। और मैं हमारे लंच हॉल को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं वहीं रो पड़ा। ये छोटा सा हिस्सा है, मैं अब बहुत गैप करके फिर उनको एक दूसरा हिस्सा पढ़ करके सुनाता हूं। और अंतिम दिवस के बाद मैं हॉस्टल गया तो रात को 1 बजे तक ना ही मुझे नींद आ रही थी, ना ही मेरे रूम पार्टनर को नींद आ रही थी। और सच पूछिए तो उस पूरी रात मैं उस आवाज के लिए तरसता रहा जो मुझे हर रोज डिस्टर्ब करती थी। उस रात में उन आवाजों को सुनना चाहता था लेकिन कोई नहीं बोल रहा था और मैं वहीं पर रो पड़ा। मित्रों, ये छोटे से टुकड़े मैंने आपको सुनाए, यहां इससे अगर आप ईमानदारी से अपना अपना विश्लेषण करेंगे मित्रों, तो आपको ऊब के बहुत से सूत्र बड़े आराम से पकड़ में आ जाएंगे। देखिए, जिंदगी बहुत कठिन नहीं है, ये तो बहुत सरल है, बहुत प्यारी है। हमारी जो समस्याएं हैं वो भी बहुत सीधी सरल रेखा की तरह होती हैं, वो तो हम उन्हें उलझा उलझा करके और पता नहीं कितने कोणों में और कितने उलझाओं में और कितने मोड़ों में तब्दील कर देते हैं और एक समय ऐसा लगने लगता है कि अब तो ये सुलझ ही नहीं सकता। दोस्तों, फिर से मैं एक प्रश्न इसी को आधार बनाकर के रिपीट करता हूं कि फिर यहां की 15 दिन की क्लासेस से आप सब क्यों नहीं उबते? बस अगर आप इससे पॉइंट्स निकाल लेंगे कि इस वजह से ऊब नहीं होती है, तो आप बड़े आराम से उनके उन उपायों को भी निकाल लेंगे जिनसे आप अपनी ऊब से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, कल मैंने इसके बारे में आपसे एक तत्व, एक एलिमेंट, एक बात की चर्चा की थी, वो कही थी संकल्प की कमी। डेफिनेटली अगर हम में संकल्प की कमी होगी तो कुछ समय के बाद हम उबने लगेंगे। इसका एक थोड़ा सा दूसरा व्यावहारिक पक्ष भी है। मैं जानता हूं कि बड़े कामों के लिए लोग अक्सर उकसावे में आ जाते हैं, अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं करते, और इसीलिए मैंने अपने जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में क्षमताओं के मूल्यांकन के लिए ही वो चार तरह के एनर्जी की बात कही थी। फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद हमें लगने लगता है कि शायद जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है मैं उसका सच्चा राहगीर नहीं हूं, मैं उतनी दौड़ नहीं कर सकता या उतनी तेज रफ्तार से नहीं दौड़ सकता, मेरे अंदर उतनी क्षमताएं नहीं है। जब हमें यह एहसास हो जाएगा, अपनी क्षमता की कमी का एहसास हो जाएगा, वैसे ही मान करके चलिए कि हमारा संकल्प कमजोर पड़ने लगेगा। और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा बिंदु होता है फ्रेंड्स जहां हमें यह ताकत होनी चाहिए कि हम उस सच्चाई से आंख मिला सकें, आंख मिलाकर बात कर सकें। मैंने ट्राई करके देखा और एक समय के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी पकड़ से बाहर की चीज है, तो मुझे लौटने में संकोच क्यों होना चाहिए? मैं फिर लौटने को अपनी आन बान शान से जोड़कर क्यों देखता हूं? और मैं सोचने लगता हूं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कुछ नहीं पड़ी है, लोगों का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो मुझे ताक रहे हैं, देख रहे हैं और मेरे ही बारे में सोच रहे हैं और मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने बारे में क्यों इतने गलतफहमी पाले हुए हूं? वो कुछ नहीं कहेंगे, ज्यादा ज्यादा होगा तो कभी उल्लेख कर देंगे कि अरे वो तैयारी कर रहा था और छोड़ छाड़ कर अलग हो गया। मित्रों, जिस क्षण आपको लगता है, क्षमता के एहसास की बात मैं कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं अब थक गया हूं, नॉट एट ऑल, थक गया हूं अलग बात है और मुझ में क्षमता ही नहीं है अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों को आप एक करके मत देखिएगा। जीवन की इन बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा। मित्रों, अभी जब कल मेरी सानिध्य से बात हो रही थी, खासकर विराट कोहली और धोनी के व्यक्तित्व के बारे में, कि विराट धोनी इतने कूल कैसे हैं या विराट कोहली इतने गंभीर क्षणों में भी इतनी मानसिक सुदृढ़ता के साथ बैटिंग कैसे कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ T20 में भारत ने जिस तरीके से जीत हासिल की और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से पराजित किया, वो बहुत ही अद्भुत जीत है, सच पूछे तो अविश्वसनीय सी है। तो आखिर में उनके व्यक्तित्व में क्या अंतर है, दूसरों की तुलना में वो कैसे इतना बेहतर खेल पा रहे हैं जबकि कोच तो उनके भी कम बेहतर नहीं है, बैट्स वही है, बल्ले वही है, टेक्निक वही सिखाई जा रही है, इसके बावजूद वो दूसरों जैसे क्यों नहीं है, उनसे अलग क्यों है? डिस्कशन के बाद जो छोटे सा अर्थ निकल करके आया, जो सानिध्य ने बताया, वो ये कि मुझे लगता है कि ये लोग दूसरों की तुलना में क्रिकेट को कुछ ज्यादा जानते हैं, ज्यादा करीब से जानते हैं, ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, ये उसी को जीते हैं, और मुझे ये बात सही लगी। तो याद रखें मित्रों कि थकना अलग बात है और क्षमताओं का न होना अलग बात है। अगर आप वैसे थक रहे हैं, ऊब हो रही है, मन थोड़ा सा विचलित हो रहा है, मन में निराशा का भाव आ रहा है, ये तो आएंगे ही। मैं लगातार अपने डेली ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करता रहता हूं कि आप इन्हें अपनी कमजोरी मत समझें, हम सब इंसान हैं, पत्थर नहीं है। इस तरह की वेव्स, इस तरह की लहरें हमारे अंदर उठेंगी, लेकिन जिस क्षण मुझे ये लगने लगे कि नहीं, मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूं, मैं तो इसके आसपास भी नहीं आ पा रहा हूं, उसी क्षण फिर हमें फैसला कर लेना चाहिए और लौटने से डरना नहीं चाहिए। फिर उस क्षण के बाद आप याद रखिए कि ऊब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक दूसरा बहुत बड़ा कारण मुझे मालूम पड़ता है, और खासकर मैं भारतीय संदर्भ में यह बात कहना चाहूंगा, मुझे इस बात के लिए माफ कीजिएगा कि मैं भारतीय संदर्भ की बात कर रहा हूं, कि हम लोगों की जिंदगी कुछ कंफर्ट जोन के ज्यादा अनुकूल है। हम सब ने अपना अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, मुझे इसी में अच्छा लगता है, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हों, कितनी भी असुविधाएं हों, लेकिन हमारा कंफर्ट जोन हो गया है, हमें इसी में खुश है। जैसे गांव की जिंदगी ले लीजिए, अगर हम सुविधा असुविधा की दृष्टि से देखें तो वहां बहुत सी असुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप गांव के व्यक्ति को शहर में ले आइए तो शहर में उसका मन नहीं लगता और बहुत से लोग गांव लौट कर चले जाते हैं। तो वो जो गांव में थे वो उनका कंफर्ट जोन था, असुविधाओं के बावजूद उन्हें वहां बेहतर लग रहा था, मतलब ये असुविधाएं जो दूसरी चीजें थी उसके सामने मायने नहीं रखती थी और वो लौटकर चले जाते। दोस्तों, ये मैंने गांव और शहर के बारे में आपको छोटा सा उदाहरण दिया, लेकिन हम सबके साथ मानसिक स्थिति पर यह होता है, हम सब ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। ये मेरी जीवन की शैली होनी चाहिए, ये मेरे जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए, इस तरह मैं पढ़ूंगा, इस तरह मैं लिखूंगा, इस तरह मैं सोचूंगा, इस तरह मेरे दोस्त होंगे, यहां मैं रहूंगा, ये मैं खाऊंगा, मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, ये हमारे कंफर्ट जोन है। और जब आप किसी भी बड़े काम के लिए लगते हैं तो डेफिनेटली सबसे बड़ी, सबसे पहला और बड़ा कदम तो यही होता है कि आप उस कंफर्ट जोन को ध्वस्त करें, तोड़ें, ब्रेक करें। और जैसे ही आप उस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं वैसे ही आपको तकलीफ होने लगती है, परेशानी होने लगती होगी, मानसिक परेशानी भी होती है, भावनात्मक परेशानी भी होती है और शारीरिक परेशानी भी होती है। फिर लगता है कि अरे बाप रे, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, अपने उसी कंफर्ट जोन में लौट चलो, और हम लौट जाते हैं। फिर इससे स्वाभाविक रूप से ऊब होने लगती है। तो मित्रों, मैंने ये 2-3 मेजर पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हैं जो मुझे आमतौर पर खासकर ऐसे मामलों में दोस्तों दिखाई देते हैं। मैंने सिविल सर्विस के उदाहरण के माध्यम से अपनी बातों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सिविल सर्विस एक बड़ी चीज है। तो इसी सिद्धांत को आप दूसरे हर उन चीजों पर लागू कर सकते हैं जो थोड़ी सी भी अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। तो मित्रों, अब लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर इतना ही। अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। दोस्तों, AIR न्यूज में 2-3-4 इंपॉर्टेंट खबरें थी। पहले तो मैं आपको हेडलाइन, जैसे हेडलाइन होती है न्यूज की, उस तरह से चलिए मैं अपने डेली RDO की जो न्यूज एनालिसिस है उसकी आपको हेडलाइन बता देता हूं। पहला तो है कि उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय ने 31 मार्च को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के लिए जो अपना निर्णय दिया है वो न्यूज थी। दूसरा ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बेल्जियम में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। तीसरी जो खबर थी वो थी कि पाकिस्तान का जो संयुक्त जांच दल है, जो पठानकोट के एयरफोर्स के बेस पर जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसकी जांच करने के लिए आया है, वो तीसरी खबर थी। चौथी एक बड़ी खबर ये है दोस्तों कि भारत सरकार ने ई कॉमर्स में 100% FDI को अलाउ किया है। ये मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र के विषय में, आर्थिक विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और चौथी बहुत ही छोटी सी जो खबर थी कि निर्माण उद्योग में जो कचरा वगैरह निकलता है उसको, उसके रिसाइकलिंग के लिए सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। ये 5 छोटी छोटी खबरें थी। अब इसमें, इस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। मित्रों, जहां तक उत्तराखंड के राजनीतिक हलचल का सवाल है, उसके बारे में मैंने कुछ तथ्य आपको कल दिए थे, और खासकर राष्ट्रपति शासन लगाने, गवर्नर की भूमिका को लेकर के जो इंडिया का के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में लगातार चर्चाएं होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप पिछले अगर 30-35 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा करके देखें तो आपको हर साल या एक आध साल गैप करके ये क्वेश्चंस मिल ही जाएगा, और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इश्यू भी है, इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। एक मेल मेरे पास ये जानने के लिए आया था कि सर, विधानसभा स्थगित है और विधानसभा भंग कर दिया गया है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, बहुत सिंपल सा अंतर है, विधानसभा स्थगित है, सस्पेंड की गई है, इसका मतलब है कि विधानसभा अस्तित्व में है लेकिन अभी वो काम नहीं कर रही है और राष्ट्रपति शासन वहां लग गया है। मतलब अब आप ये मान करके चलिए कि लोगों का शासन न हो करके वहां एक तरह से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी शासन कर रही है। जैसे ही सरकार को लगेगा कि अब यहां राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है, स्थितियां सामान्य हो गई हैं, तो राष्ट्रपति शासन वहां से उठा लिया जाएगा और जो विधानसभा है यानी कि जो MLA चुन करके आ गए हैं उन्हीं को फिर से वही अधिकार मिल जाएंगे और वो लोग अपना मुख्यमंत्री चुन करके और फिर से विधानसभा का काम शुरू हो जाएगा। ये है विधानसभा स्थगित है। लेकिन विधानसभा भंग है का मतलब है कि अब विधानसभा का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है, जो MLA थे वो MLA भी नहीं रह गए हैं। जब राष्ट्रपति शासन यहां से खत्म होगा या राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही वहां फिर से चुनाव कराए जाएंगे और फिर से चुनाव करने के बाद जो स्थिति बनेगी उस हिसाब से वहां सरकार का गठन होगा। दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप नौकरी के बारे में सुनते हैं कि अगर किसी पर कोई आरोप लग गया है या भ्रष्टाचार का, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसको सस्पेंड करती है। सस्पेंड करने का मतलब यह नहीं कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, सस्पेंड करने का मतलब है कि ठीक है भाई, तुम अब जरूरी काम नहीं करोगे तो वहां जाकर के बैठो, हम पहले इसकी जांच करा लेते हैं। जांच कराने के बाद अगर आरोप सही पाए गए तो सरकार फिर निर्णय लेती है कि इसको नौकरी से निकाला जाए या नौकरी में रखा जाए, अदरवाइज उसको नौकरी में रख लिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अब वो फिर से एग्जाम देगा और नौकरी में आएगा, बस सस्पेंड और भंग करने का ये अर्थ है। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में स्थिति बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब आप देखेंगे मित्रों कि उच्च न्यायालय ने, जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, उन्होंने कहा कि 31 मार्च को वहां विधानसभा में वो बहुमत सिद्ध करेंगे। ये मामला अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कांग्रेस पार्टी उच्च न्यायालय में गई, उच्च न्यायालय ने अब विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने की बात कही। और आपको ध्यान होगा कि कल के डेली ऑडियो में मैंने 1994 का जो एसआर बोम्मई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो बहुत माइलस्टोन जजमेंट है, उसकी आपको याद दिलाई थी। और ये आपको याद हमेशा के लिए रहना चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधानसभा में किसी का बहुमत है या नहीं है, इसका फैसला सिर्फ विधानसभा के अंदर होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को यानी कि राज्यपाल को या राष्ट्रपति को यह फैसला करने का अधिकार नहीं है। उसी को आधार बना करके उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह बात कही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाएगी, अपील कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और उच्च न्यायालय के इस आदेश को पर अपील करेगी। अब देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय क्या करता है। अब आप देखें कि इसमें जो एक कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा आ गया है, मैंने बताया कि इस बार की जो राष्ट्रपति शासन लगा है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो आया था, वो कल मैंने आपको चर्चा की थी कि इससे ठीक पहले जो विनियोग विधेयक था ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। यानी कि शेड बदल गया है, राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में जो आधार चाहिए, जो कारण होने चाहिए, उससे वो शेड बदल गया है। अब यहां पर जो है वो ये कि जो 9 बागी विधायक थे, जो कांग्रेस के, जो कांग्रेस से अलग होकर के जिन्होंने अलग गुट बना लिया था, और इसी के कारण वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत जी हैं, उनके सामने संकट पैदा हुआ, उनको भी मतदान का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनको मतदान का अधिकार होगा, लेकिन वो अलग से मतदान करेंगे, उनके मतदान के रिजल्ट अलग से लिफाफे में बंद रहेंगे और वो उच्च न्यायालय के पास पेश किए जाएंगे। अब यहां पर एक विचित्र सा मामला ये आता है कि जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है विधानसभा का या लोकसभा का, वो अपने हाउस के अंदर सर्वे सर्वा होता है। उसके जो निर्णय होते हैं उसके निर्णय को अक्सर चुनौती नहीं दी जाती। और अगर आप कुछ महीने पहले ही जो अरुणाचल प्रदेश में जो घटना घटी थी, मुश्किल से 1-1.5 महीने पहले की बात है, अगर आप उसे याद करें, तो वहां भी जो स्पीकर की जो निर्णय था, उच्चतम न्यायालय ने उनके निर्णय को सही मानते हुए उसके खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने माना था कि नहीं, जो स्पीकर है वो स्पीकर वहां सर्वे सर्वा है, उनकी बात सर्वोपरि है। तो स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, 9 विधायकों को, कि ये अब एमएलए नहीं रहे, मतदान नहीं कर सकेंगे। लेकिन उच्च न्यायालय ने उनको मतदान करने का अधिकार दे दिया है, हालांकि उन्होंने ये शर्त लगाई है कि वो अलग से मतदान करेंगे और वो अलग से लिफाफे में बंद होगा। ये फिर से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसमें ये आ गया है। तो जटिलताएं तो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अब मित्रों हम लोग देखते हैं कि ये जटिलताएं किस तरीके से सुलझेंगी, अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है या स्थितियां क्या बनती हैं, वो भविष्य बताएगा। लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस पर आपको बहुत गंभीरता से नजर रखनी चाहिए। और इसकी जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों को खासकर आपको ध्यान में रखना होगा। मोटी मोटी चीजें तो आप लोगों को मालूम ही है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और एक बात और बता दूं, इसी रेफरेंस में बात करना चाहूंगा कि 1989 में जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय संसद ने एक विधेयक पारित किया था जिसे हम दल बदल विधेयक कहते हैं। दरअसल हो क्या रहा था कि इससे पहले कोई भी एमएलए या एमपी अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाता था, तो उससे सरकारों में बहुत संकट आने लगा था। कुछ लोग उधर चले गए, पता लगा सरकार गिर गई, फिर इधर आ गए, तो मतलब दल बदलना बड़ी आम सी चीज हो गई थी। अब क्या किया जाए, इसको कैसे रोका जाए? सच पूछे तो सभी राजनीतिक पार्टियां इससे त्रस्त हो गई थी। तो 1989 में दल बदल विरोध कानून आया था। फिर अब दल बदलना उतना आसान नहीं रह गया, लेकिन उसमें एक प्रोविजन ये किया गया है कि किसी भी पार्टी के जितने भी एमएलए या एमपी हैं, अगर उसमें से 1/3 दल बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, तो उन्हें मान्यता मिलेगी, लेकिन उनकी संख्या 1/3 से अधिक होनी चाहिए, 1/3 या उससे अधिक होनी चाहिए। यहां जो 9 विधायक हैं, इनकी संख्या 1/3 से कम है। इस मामले में ये फिर से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम इनको आ रही है। तो यहां फिर से एक संकट इनके लिए खड़ा हो गया है। तो मित्रों यहां पर थोड़ा सा एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा मिस कर रहा हूं मैं, ये 1/3 है या 1/4 है, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे या चेक करने के बाद मैं फिर कल आप लोगों को इसको क्लियर करूंगा कि ये जो संख्या है ये 1/3 है या 1/4 है। चलिए, तो ये उत्तराखंड में अभी जो राजनीतिक संकट है मित्रों, उसको लेकर के ये वर्तमान परिस्थिति है। अब मैं आता हूं एक दूसरे पॉइंट पर जो बेल्जियम को लेकर है। बेल्जियम में हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए हैं और वो भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। न्यूज में आपने ये सुना है कि 3 इश्यूज पर बातचीत होंगी। ये 3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे विदेश नीति के अभी के पिलर्स भी हैं। आप देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हों या हमारे प्रेसिडेंट हों, अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो ये 3 इश्यू उसमें आपको शामिल मिलेंगे ज्यादातर, और यहां तक कि जो समझौते होते हैं उसमें इन 3 इश्यूज को शामिल करने की बात की जाती है। भारत अगर विश्व मंच पर कहीं भी जब बात अपनी रखता है तब वे 3 इश्यू को शामिल करता है। उस लिहाज से आपको ये पिलर्स मालूम होने चाहिए और न्यूज में ये बात कही गई थी। पहला है निवेश, कि भारत में किस तरीके से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए। दूसरा है विश्व आतंकवाद के खिलाफ कैसे उसका मुकाबला किया जाए, पूरे विश्व को इकट्ठा किया जाए। और तीसरा, ये एक नया शामिल हुआ है और खासकर पेरिस सम्मेलन के बाद, अभी जो पेरिस में जो जलवायु सम्मेलन हुआ था उसके बाद ये एक नया इश्यू शामिल हो गया है, वो है नवीनीकरण ऊर्जा, कि किस तरीके से भारत जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत है, उसके बारे में दूसरे देशों से समझौता करके अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता है। ये 3 पॉइंट्स आपने न्यूज में सुने हैं और ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। इसके बाद मित्रों, जो पाकिस्तान का संयुक्त जांच दल है ये थोड़े से अभी विवाद में है। उनका जांच दल भारत में आ चुका है और उनको थोड़ी थोड़ी जगहों पर ले जाया जाएगा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसको लेकर के कुछ विपक्ष पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं और ये मान करके चल रही हैं कि हम अपने यहां दूसरे देश के जांच दल को कैसे अलाउ कर सकते हैं, या हमारी सॉवरेंटी पर आघात है या ये हमारी सुरक्षा में भी एक तरह से सेंध लगाने जैसा है। तो इसको लेकर के एक विवाद की स्थिति चल रही है। देखते हैं कि इस जब जांच दल अपना काम पूरा कर लेगी तो इसके बाद क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन एक बीज के रूप में मैं केवल एक संक्षिप्त कंटेंट के रूप में इसे आपको याद दिला रहा हूं। मित्रों, ई कॉमर्स के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का व्यापार धीरे धीरे हिंदुस्तान में कितनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के भी एक विवाद की स्थिति लगातार बनी हुई है कि इसको अलाउ करें नहीं करें, क्योंकि खुदरा व्यापारी इसमें मारे जाते हैं, छोटे छोटे दुकानदारों की का जो व्यापार है वो खत्म हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसके बारे में जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, वो क्या सोचते हैं। डेफिनेटली इस पर लेख आने शुरू होंगे, जब लेख आएंगे तब इस पर हम लोग बातें करेंगे। मित्रों, निर्माण उद्योग के बारे में सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें यही है कि जो मलबा निकलता है उस मलबे को कैसे रिसाइकल किया जाए, कैसे उसका फिर से हम उपयोग करें, रीयूज करें रिसाइकल करके, क्योंकि वो पड़ा रह जाता है और उससे फिर प्रदूषण भी फैलता है और गंदगी भी फैलती है। तो उसके लिए एक स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत ये अधिसूचना काफी मायने रखती है। बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे कि इस तरह के निर्माण उद्योग, पता लगा कि वो मकान बन रहे हैं लेकिन उनका मलबा पड़ा हुआ और कितने सालों तक पड़ा हुआ है और कोई उठाने वाला नहीं है, तो उस पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। दोस्तों, न्यूज में इतना ही। अब मैं न्यूज पेपर के ऊपर आता हूं। मैं न्यूज पेपर में आपका ध्यान 2 विशेष आर्टिकल्स की ओर दिलाना चाहूंगा। एक आर्टिकल दैनिक जागरण में छपा है और डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का है, और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी प्रिय श्रोता हैं अब डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी के नाम से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे। मुझे 2 चीजें उनकी बड़ी खूबसूरत लगती है। एक तो उनके समझाने का जो अंदाज होता है वो बहुत ही आम अंदाज में चीजों को समझाते हैं, तो चीजें एकदम समझ में आ जाती हैं। दूसरा ये होता है कि उनके जब आप लेख पढ़िए तो आपको कुछ ना कुछ एक नया नजरिया मिलता है, एक नए तरीके से सोचने का एक रास्ता मिलता है। भरत झुनझुनवाला जी ने इसमें सरकारी बैंकों का जो संकट है उसको लेकर के चर्चा की है कि सरकारी बैंक लगातार कैसे करप्शन की वजह से लगातार घाटे में चलते चले जा रहे हैं। सरकार उनके घाटे को फिर पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पैसा देती है, फिर उसका खजाना खाली होता है और सरकार जो ये पैसा देती है बटने चोरेले की, वो जनता से टैक्स के रूप में लेती है। और इस प्रकार लगातार ये जो सरकारी बैंक हैं ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि प्राइवेट बैंक्स की इतनी बुरी हालत नहीं है, वो काफी बेहतर स्थिति में है। तो उसका उन्होंने एक उपाय सुझाया कि जो जितने भी हमारे सरकारी बैंक है, ज्यादा अच्छा है कि उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। किसी समय इंदिरा गांधी हमारी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने जो प्राइवेट बैंक थे उनका सरकारीकरण किया था। सरकारीकरण इसलिए किया था कि भाई ये जो बैंक हैं ये बड़े बड़े लोगों को ही लोन देते हैं, हमारे गरीब आदमी को, किसान को, छोटे छोटे उद्योगपतियों को लोन नहीं मिल पाता, तो इनका हम सरकारीकरण कर देंगे, नेशनलाइजेशन कर देंगे, तो उनको भी लोन मिलने लगेगा। इस वजह से किया गया। अब बिल्कुल रिवर्स में अब बात हो रही कि अब इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। तो मित्रों, प्राइवेटाइजेशन कर देने से क्या फर्क पड़ता है, मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के, उनको मैंने एक सिस्टम बताया था कि किस तरह से कंपनी काम करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, तो आप उसको याद कर लेंगे तो फिर ये जो डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का जो ये लेख है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक दूसरा है वो एडिटोरियल कमेंट है, और ये जो कमेंट है इंडियन एक्सप्रेस का है। खासकर आपको मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर वाशिंगटन जाएंगे और वाशिंगटन में वो न्यूक्लियर सिक्योरिटी सबमिट में भाग लेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट है। इस सबमिट के बारे में अभी कुछ चीजें आएंगी, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि इस सबमिट का क्या उद्देश्य है, कब शुरू हुआ है। तो थोड़े से बैकग्राउंड के रूप में ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आज चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि अभी इस पर हिंदी में भी चीजें आनी शुरू होंगी, हम इसे लेंगे। और यदि चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो मैं इसके बारे में आप सबको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सबमिट है। खासकर चूंकि इसमें सीधे सीधे न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बात है और भारत इसके लिए लगातार कोशिश में लगा हुआ है, तो इस पर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल मैं ये क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग इसे देखने समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी मित्रों कुछ और क्लिपिंग्स हैं, वो इसमें नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे ही, उन्हें आप सब देख लेंगे। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स से इतना ही। अब मैं आता हूं अपने अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं एक मेल की चर्चा करना चाहूंगा। ये सुमित यादव का मेल है जिन्होंने कालपी जालौन उत्तर प्रदेश से लिखा है। तो सुमित, आपको मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की टीम की तरफ से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने जो लेखापाल, उत्तर प्रदेश के लेखापाल का जो रिजल्ट होता है उसमें फाइनल लिस्ट में आपने स्थान प्राप्त कर लिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप भविष्य में भी इस तरह की बेहतर सफलताएं हासिल कर सके। सुमित यादव ने मित्रों जो लिखा है, मैं थोड़ा सा उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि इन्होंने लिखा है कि वो 7 महीने से लगातार डेली ऑडियो सुनते थे। पहले जब भी इंटरव्यू का नाम आता था तो वो उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता था। फिर इन्होंने एक मेरी किताब भी पढ़ी कि आप आईएएस कैसे बनेंगे, उसमें इंटरव्यू का उन्होंने चैप्टर पढ़ा। और इसके बाद जब वो इंटरव्यू के लिए गए तो उन्होंने लिखा है कि अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा मेरा इंटरव्यू 10 मिनट अधिक चला, साथ ही मैं अपने विचारों को बोर्ड के सामने सुस्पष्ट तरीके से व्यक्त कर पाया। डेफिनेटली जब आप बोर्ड के सामने अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा अपेक्षाकृत लंबा खींचता है, और अगर आपका इंटरव्यू लंबा खींच रहा है तो ये अपने आप में उसकी गुणवत्ता का प्रमाण है। आप मान सकते हैं कि आपका इंटरव्यू बेहतर बना है। तो अंत में जो फाइनल रिजल्ट आया तो इन्हें सफलता मिल गई है और सुमित ने इसका श्रेय डेली आरडीओ को दिया है। तो सुमित, इसके लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से आपके भविष्य की शुभकामनाओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मित्रों, अब ईमेल का बहुत से मेल आए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रशांत कुमार, जसविंद्र चौहान लखनऊ से, आनंद विकास, इंद्रजीत महतो और रानी राजपूत इंदौर मध्य प्रदेश से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के आडियो, डेली आडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।